आज का रात्रि क्लास है 27/12/1967। अब ये जैसे बच्चों को समझाया हम सो का अर्थ कि हम आत्मा 184 जन्म लेती है, ये ठीक है ना बच्चे, क्योंकि ये बातें आज समझनी होती है। पहले तो समझते थे कि हम आत्मा सो परमात्मा, अब ऐसे तो नहीं कि दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है सब परमात्मा, नहीं। पहले तो बच्चे जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत है और उस भगवंत को कहा ही जाता है बाप। किसका बाप? कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा का बाप। पृथ्वी में जो भी प्राणी मात्र है उनमें भी खास मनुष्यों का बाप और मनुष्यों में जो आत्माएं हैं उन आत्माओं का भी बाप, क्योंकि आत्मा के बगैर शरीर नहीं काम करता और शरीर के बगैर आत्मा काम नहीं करती। अभी बाप तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, है? अभी माने कभी पुरुषोत्तम संगम युग में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य की बात है, स्थापना करते हैं नई दुनिया की। कितने टाइम में? बस दक्ष से राजधानी स्थापन कर देते। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है कि कैसे पुरानी दुनिया तो विनाश के सामने अभी खड़ी है, मना अभी विनाश तो दिन प्रतिदिन नजदीक होता जाता है। ड्रामा के प्लान अनुसार है, बेहद का ड्रामा है, क्योंकि जो पास्ट हुआ सतयुग पास्ट हुआ, त्रेता पास्ट हुआ, द्वापर पास्ट हुआ और कलयुग भी अभी पास्ट होकर के पूरा करके होता है। और बिना इसके लिए विनाश के लिए ये सभी मिसाइल्स वगैरह जो महाभारत में प्रसिद्ध है मूसल है वो 5000 वर्ष पहले वाले वो ही गीता का एपिसोड, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है ना कि महामारी महाभारत की लड़ाई, तो ये महाभारत की लड़ाई होती है। क्या होता है? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। पहले क्या होता है? पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, तो बाप बताते ही हैं, मैं नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। तो नई दुनिया की स्वर्ग की स्थापना होती है और पुरानी दुनिया का विनाश। ऐसे नहीं है कि पहले विनाश हो जाए फिर नई दुनिया बने। अरे मकान भी बनाते हैं तो क्या करते हैं है? पहले नया मकान बनाने का साज सामान एक कमरे में इकट्ठा करते हैं ना, फाउंडेशन डालते हैं कि नहीं है? बाद में फिर पुराना मकान गिराते हैं। अभी ये स्थापना और विनाश करता कौन है? अभी करता है बाप है? कौन सा बाप है? कौन सा बाप करता और कौन सा बाप अकर्ता? कहते हैं आत्माओं का बाप अकर्ता और मनुष्यों का बाप करता। लेकिन क्या अलग अलग होकर के ये काम कर सकते हैं? नहीं, आत्माओं का बाप है जो अभोक्ता है करता है, वो जो मनुष्य साकार है, मनुष्य सृष्टि के जो बाप का जो बाप है, उसमें प्रवेश करके तब ये स्थापना और विनाश का काम होता है। तो देखो, बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा देखो देखा स्थापना हो रही है ना है? कब की वाणी है? है? 67 की वाणी है ना? तो स्थापना हो रही है? हाँ स्थापना हो रही है, क्योंकि स्थापना के लिए पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना। यज्ञ तो ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाते हैं, तो ब्राह्मण भी कौन से? एक कलयुगी दुनिया के ब्राह्मण है जो मांस भूसा अंडा शराब सब खाते रहते हैं। नहीं, असल ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है, तो ब्राह्मणों में भी मुख्य ब्राह्मण कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा है ना इस सारी सृष्टि में मनुष्यों की, 500-700 करोड़ मनुष्यों का पिता, वो प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के चार मुख दिखाई दिए तो वो कोई प्रजापिता ब्रह्मा हुआ। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा माने है टेम्परेरी रथ है, यह आदि से लेकर के अंत तक मुकर्रर रथ, मुकर्रर रथधारी है, उसके द्वारा ये यज्ञ रचा हुआ है। जिसके द्वारा रचा हुआ है अंत भी उसी के द्वारा होगा। संपूर्ण आहुति किसके द्वारा पड़ेगी है? कहते हैं ना अंतिम आहुति किसकी होती है? कौन से देवता की? शंकर देवता की अंतिम आहुति होती है। उस अंतिम आहुति में क्या करते हैं? जो भी भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, जो भी सामग्री बचती है सब इकट्ठी करके थाल का थाल सारा का सारा है सामग्री यज्ञ में झोंक देते हैं, कुछ नहीं बचे। तो जिसके द्वारा ये यज्ञ रचा हुआ है उसी के द्वारा अंतिम आहुति, तो गाई हुई है शंकर महादेव की अंतिम आहुति गाई हुई है। तो उसको भी ब्राह्मण के रूप में दिखाते हैं ना, शंकर को नहीं दिखाते किस रूप में, क्या निशानी है? नागवलाएं पड़े ये कोई निशानी हुई, क्या निशानी दिखाते हैं पता ही नहीं है? क्या विष पीता है ये निशानी हुई, लो है? अरे निशानी दिखाते हैं जनेऊधारी यज्ञोपवीत धारण किए हुए दिखाते हैं। हाँ तो ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनते हैं ना, है ना? तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए और मुख्य ब्राह्मण भी चाहिए। किस कौन सा ब्राह्मण? चोटी, चोटी का ब्राह्मण। तो वो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा तुम सभी ब्राह्मण बन रहे हो। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बन रहे हो, ऐसा है? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं? उसके द्वारा भी बन रहे, उसके द्वारा भी बन रहे, कौन मुखिया कौन हुआ फिर? अरे कोई एक मुख्य होगा कि दोनों एक जैसे? एक जैसा तो आत्मा का पार्ट होता ही नहीं किसी का, है? होता है हाँ नहीं फिर? क्योंकि ब्रह्मा में भी, दादा लेखराज ब्रह्मा में भी है, जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो ऐसे थोड़ी कि मुकर्रर तधारी को लिए बगैर प्रवेश कर जाते हैं, नहीं। शरीर तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो छूट गया, कब कब छूटा है? जब ओम मंडली में पार्ट चला तब ही 1942 में शरीर छूट गया, तो शरीर खत्म हो गया ना कि रह गया? हाँ सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना, सूक्ष्म शरीर है, उस आत्मा का सूक्ष्म शरीर कभी खत्म नहीं होता। और जो भी आत्माएं हैं उनका स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है, लेकिन एक है जिसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, ज्योति बिंदु आत्मा, बीज। बीज तो छोटा होता है ना, हाँ। तो वो बीज रूप आत्मा मुकरर रथधारी के साथ शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश होते हैं कि अकेले ही प्रवेश होते हैं? ठीक है ना, तो क्या कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बन रहे हो, या चार मुखों वाले ब्रह्मा का ही नाम देंगे? अभी ब्राह्मण बाप ने समझाया है, क्योंकि वो बाप भी मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण बनता है या नहीं? किसका बच्चा बनता है? ब्राह्मण तो ब्रह्मा का बच्चा होता है, है? वो किसका बच्चा है? कहेंगे उसको भी जन्म देने वाली कौन? जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से सुनता है तब ब्राह्मण बनता है। कहते हैं ना शास्त्रों में, ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? शूद्र। पहले कौन निकले? पहले ब्राह्मण निकले। तो वो है पहले पहले निकला हुआ चोटी का ब्राह्मण। ये बात बाप ने समझाई है, तो वो पहले पहले सो देवता बनने वाले। क्या सो हमका क्या अर्थ बताया? सो हम वही आत्मा है जो सृष्टि के आदि में थे। तो ब्राह्मण सो देवता, जिस नंबर के ब्राह्मण पुरुषार्थी उसी नंबर के देवता, फिर उसी नंबर के देवता सो क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो फिर शूद्र, और फिर शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते। क्यों? शूद्र से ब्राह्मण बनाने की क्या दरकार? शूद्र से सीधे देवता क्यों नहीं बनाई देते है? क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण बनाने वाला है ब्रह्मा, ब्रह्मा से ही ब्राह्मण बनते हैं। क्या ब्रह्मा क्या काम करे शूद्रों को? ब्रह्म, अब वो प्रजापिता ब्रह्मा हो या जो भी ब्रह्मा के मुख है, सब इकट्ठे होकर के काम करें। तो ब्रह्मा का काम है शूद्रों को क्या बनाना? ब्राह्मण बनाना। तो ब्राह्मणों को फिर बाप बैठ समझाते हैं, बाप शूद्रों को नहीं समझाते है? कौन सा बाप? आत्माओं का जो बाप है वो शूद्रों को नहीं समझाते, वो किसको समझाते हैं? ब्राह्मण चाहिए। हाँ, क्योंकि बाप तो एवर प्योर है ना, है? तो एवर प्योर को क्या चाहिए? पवित्र ब्राह्मण चाहिए। तो ये चक्कर बाप ने समझाया। क्या चक्कर? ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र हुआ ना? हाँ। और ये चक्र अच्छी तरह से समझाया है। शूद्र है पांव में सल और ब्राह्मण है चोटी है, तो ये चक्कर हो गया ना है? अरे चक्र हुआ कि नहीं? अरे गोला हुआ ना, गोल गोल चक्र होता है ना, तो यादगार बनाई हुई है। भक्ति मार्ग में क्या यादगार है इसकी? गोल चक्कर की क्या करते हैं है? हाँ, गुलाटी लगाते हैं, परिक्रमा करेंगे ना मंदिर की, या तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भी बहुत होते हैं जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो गुलाटी लगाते हुए जाते हैं, पांव नीचे सर ऊपर, फिर सर नीचे पांव ऊपर, और फिर दोनों मिलते हैं, सर और पांव दोनों को मिलाई देते हैं। तो ये हुआ संगम। तो ये चक्कर बायजोली का अच्छी तरह से बाप ने समझाया। तो ये पुरानी दुनिया का विनाश है अभी, और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। और 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आए करके स्वर्ग की स्थापना की थी, और बाप की महिमा भी यही है। देखो है क्या कि पहले पहले हमेशा बच्चों को कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान देते हैं। ज्योति बिंदु आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर तो विनाशी आज है कल खलास हो जाएगा, लेकिन तुम तो अविनाशी, अविनाशी आत्मा। तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मा का इस दुनिया में ज्ञान हो। किसी से पूछो तुम कौन हो तो क्या कहेगा? अब डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, बुढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, दुनिया भर की शरीर की बात बताएंगे, आत्मा की बात बताएंगे नहीं? कोई को ज्ञान नहीं। तो देखो ये समझते हैं सभी है कि हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर दूसरा लेती है। हम जीव आत्मा है, जीव आत्मा माने जीवित आत्मा, जीवित आत्मा माने शरीर के अंदर हरकत करने वाली आत्मा। पर आत्मा है क्या चीज है? क्या है वो किसी को पता नहीं। रूप का पता है किसी को? रूप का आत्मा का पता ही नहीं, किसी को भी इस दुनिया में मालूम नहीं। क्या आत्मा तो बहुत छोटी होती है, है? भले गीता में परमपिता परमात्मा के बारे में बताई दिया, अणोणीयांसम, अणु से भी अनुरूप है, लेकिन फिर परमात्मा के बारे में बताया, परमपिता के बारे में बताया, आत्माओं के बारे में थोड़ा ही बताया कि आत्मा का रूप क्या है। अरे जैसा बाप का रूप वैसा ही बच्चे का रूप होगा। अरे बाप सांप जैसा तो उसका बच्चा भी सांप जैसा लंबाई होगा ना, हाथ ही मोटा ताज है तो बच्चा भी सांप जैसा लंबा होगा? नहीं, हाथ ही जैसा ही मोटा ताजा होगा ना। हाँ तो देखो, जैसे बाप आत्माओं का अति सूक्ष्म अणु रूप है, वैसे आत्मा रूपी बच्चे भी अणु रूप हैं। और कहते भी हैं कि ब्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गाती तो है, क्योंकि आत्मा हमेशा ब्रकुटी के बीच में रहती है, वहां निवास करती है ना। है बिंदी कहां लगाते हैं, टीका कहां लगाते हैं? ब्रकुटी के बीच में लगाते हैं, है ना। कोई नाक के ऊपर टीका लगाता है क्या? बिंदी लगाता है? नहीं नहीं लगाता। क्यों? अरे नाक में आत्मा थोड़ी रहती है, आत्मा तो ब्रकुटी में। गोली मारो, इंदिरा गांधी को कितनी गोलियां छाती में मारने वाली, अगर वो जानता होता है कि ब्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है तो निशाना बांध के एक ही गोली में काम तमाम हो जाता, लेकिन वो मालूम ही नहीं था उसे। उसे क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता। तो ये आत्मा ब्रकुटी के बीच में निवास करती है, ये आत्मा का तत्व है, हाँ, जिस पर बैठती है, है, और ये अकाल तत्व कहा जाता है। हाँ कैसा तत्व? इस तत्व को काल नहीं खा सकता। तो क्या हर आत्मा का जो तत्व है ब्रकुटी के मध्य में जिसमें बैठती है वो अकाल मूर्त है? नहीं, तो फिर किसको अकाल तत्व कहा जाता है? आत्माओं में वो आत्मा जो मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, उसकी आत्मा का जो तत्व है कैसा है? अकाल तत्व। और सिखों ने उसे गुरुद्वारे में लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है। क्यों है? क्या वो लक्कड़ बुद्धि है या नहीं? हाँ, जिस तख्त में वो आत्मा जिसे परमात्मा गीता में नाम दिया है वो लक्कड़ बुद्धि बन जाती है। अभी उसको अकाल तख्त कहा जाता है। आत्मा के ठहरने बैठने के स्थान को, तो उसको काल नहीं खाता है। किसको? काल किसको नहीं खाता है? हैं? उसको काल नहीं खाता है। किसको नहीं खाता है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, उसको काल नहीं खाता है, उसके प्रकृति के मध्य में जो अकाल तत्व है वो भी अकाल तत्व, इसीलिए कहा जाता है कि काल उसे खाता नहीं। देखो अच्छी तरह से उसे देखो, क्योंकि ये हर एक बात थोड़ी समझने की है, है? आत्मा अकाल मूर्त है, है? कैसी मूर्त? मूर्त तो है लेकिन अकाल मूर्त है। मूर्त माने, मूर्ति माने साकार या निराकार? हाँ साकार मूर्ति है लेकिन अकाल मूर्ति है। तो ये तो सब जानते हैं कि शरीर को काल खाता है या आत्मा को काल खाता है, है? शरीर को काल खाता है लेकिन वो जो अकाल मूर्त है उसकी आत्मा के शरीर को काल खाता है नहीं खाता है? अरे वो आत्मा गोल्डन एज भी होती है और फिर इस दुनिया में सुख भोगते भोगते क्या बन जाती? आयरन एज भी बन जाती है। कौन सी युग में? कलयुग में आकर के आयरन जैसी काली हो जाती है, मरती नहीं है। अरे आत्मा तो कोई भी नहीं मरती है लेकिन वो स्पेशल एक ऐसी आत्मा है, है जो गोल्डन एज में भी आती है, सिल्वर एज में भी आती, कॉपर में भी है, और आयरन एज में आने के बावजूद भी है उसका शरीर खलास नहीं होता। ये आत्मा कहते हैं ये आत्मा तो दूसरा शरीर लेती है, एक शरीर छोड़, फिर वो छोड़ तीसरा लेती है, ऐसे करते करते 84 जन्म लेती है, है? एक ही आत्मा इतने जन्म लेती है, समझा? देखो इस आत्मा में ये छोटी सी आत्मा है ना बच्ची, इसमें देखो कितना पार्ट भरा हुआ है, है? इम्पेरिशिबल पार्ट भरा हुआ है, विनाशी पार्ट भरा हुआ है या अविनाशी पार्ट भरा हुआ है? हाँ कौन सी आत्मा? मुकर्रर धारा, मुकर्रर शरीरधारी आत्मा में जिसमें बाप प्रवेश करते हैं सुप्रीम सोल, उसमें ऑल राउंड पार्ट भरा हुआ है ड्रामा का। तो ये एक आत्मा है, है जिसमें 84 जन्म का सबसे सबसे बहुत पार्ट मिलता है, है? तुम बच्चों को भी ब्राह्मणों को पार्ट तो मिलता है, अब ब्राह्मण तो नंबर वार है, तो ब्राह्मणों को जितना जन्म मिलता है इतना ही पार्ट मिलता है, बाकी एक है लीप युग, ये है ना लीप युग, पुरुषोत्तम युग, तो उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम लीप युग। छोटे से छोटा है और ये कुल भी देखो ब्राह्मणों का है, इस युग में है कौन से वर्ण के? हाँ इस युग में शूद्र वर्ण के नहीं, वैश्य वर्ण के नहीं, क्षत्रिय वर्ण के नहीं, देवता वर्ण के नहीं, कौन से वर्ण के है? सब ब्राह्मण वर्ण के। हाँ ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं तो फिर देवता कहे जाते हैं, तो ये देवताओं से भी ऊंचा कुल है, ऊंचे से ऊंचा कुल है ना ये बच्ची। तो ये है ब्राह्मण सर्वोत्तम कुल, सब वर्णों से उत्तम, क्योंकि ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते। उन्होंने तो शास्त्रों में किसको चक्र दिखाई दिया? ब्राह्मणों को दिखाया, चोटी वाले ब्राह्मणों को, या देवताओं को दिखाया है? किसको दिखाया? ब्राह्मणों को दिखाया शास्त्रों में है? शास्त्रों में तो देवताओं को, विष्णु को, कृष्ण को चक्र दिखाया है? नहीं है? बाप कहते हैं ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं। ये सुदर्शन चक्र जो है हाँ, आत्मा के 84 के जन्मों के चक्र को देखना, दर्शन करना, ये देवताओं का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। हाँ, तो स्व माने आत्मा, इस आत्मा को किसने बताया कि तुम आत्मा? अरे बाप ने ज्ञान सुनाया कि तुम आत्मा, ये तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया है तुमको, उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ना तीसरा नेत्र। ज्ञान जानने के लिए तीसरा नेत्र दिया है। तो आत्मा को ज्ञान देते हैं ना बाप, बाप कोई शरीर को ज्ञान नहीं देते हैं, शरीर तो जड़ है, जड़ कैसे ज्ञान लेगा? ज्ञान कौन लेता है? चैतन्य आत्मा ही ज्ञान लेगी ना। तो आत्माओं को ज्ञान देने वाला कौन होना चाहिए? शरीरधारियों का बाप? नहीं, शरीरधारियों का बाप तो खुद ही जड़ बुद्धि बन जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाता है। तो आत्माओं को ज्ञान देने वाला आत्माओं का बाप चाहिए, तो वो आए ही हैं यहां इस सृष्टि पर। क्यों आए? कि बच्चे को काम चिच्छा पर चढ़े है, जो चढ़ चुके हैं ना, और सभी बच्चे काले बन गए हैं, भस्म हो गए हैं। शास्त्रों में दिखाया ना, राजा सागर के बच्चे भस्म हो गए। तो उन सब बच्चों को फिर ज्ञान चिच्छा पर बिठाए और पावन बनाते हैं। क्या कोई चीज पवित्र कैसे बनाई जाती है? सोने में खाद पड़ी हुई है, उसे कैसे पवित्र बनाते हैं? अग्नि में डालते हैं ना, तो पवित्र बनती है। तो ये है ज्ञान शिक्षा, और ज्ञान शिक्षा के आधार पर है ये योग शिक्षा। हाँ, योग की चेता। तो इस ज्ञान और योग की चेता में बैठ करके पावन बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसे पति दुनिया में कोई पावन होते ही नहीं है। तो जो एवर प्योर बाप है उसको ही इस पति की दुनिया में आना पड़ता है। ये सत्युग में देखो, कभी भी कोई इनको ऐसे नहीं कहेंगे हैं कि ये कोई पतित है। नहीं, लक्ष्मी नारायण को कोई पतित कहेगा? नहीं कहेगा। ये तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो तुम बच्चे ऐसे थे ना, है? फिर तुम ये नौ कला हो गई। कब? कलयुग के अंत में आकर के कला ही कहां, सत्युग के आज में 16 कला संपूर्ण थे, है? फिर आत्मा सुख भोगते भोगते अभी देखो कलयुग में तमो प्रधान बन गई, और फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो कौन बनाएगा? सतो प्रधान देवता बनाएगा, देवताओं को कहेंगे सतो प्रधान। सत्व गुणों में प्रधान होता है और दूसरे दूसरे गुण गौण होते हैं। दूसरे गुण होते हैं कि नहीं है? अरे ये सारी सृष्टि, चाहे देवताओं की हो, क्षत्रियों की हो, वैश्यों की हो, शूद्रों की हो, सारी सृष्टि में जो भी वर्ण है सब तीन अवस्थाओं से पसार होते हैं। तीन अवस्थाओं से भरी पूरी ये सारी सृष्टि। तो जब तमोगुणी बन जाते हैं तो सतोगुणी कौन बनावे? देवताएं बनावेंगे? नहीं, उनमें तो खुद ही कुछ न कुछ अंश होता है रजो और तमो का। नहीं होता है तो नीचे क्यों गिरते है? तो एक बाप ही ऐसा है आत्माओं का, जिसमें तम तामस और राजस गुण बिल्कुल होता ही नहीं, होता है बिल्कुल नहीं होता। तो उसको कहते हैं सत्व प्रधान कहेंगे कि सत्व कहेंगे, सत्य चित्त आनंद कहते हैं। वो एक ही सत्य है, और तो बाकी दुनिया में किसी को सिर्फ 100% सत्य कह ही नहीं सकते। तो आत्मा को है पवित्र बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये जो शरीर का जेवर है वो भी पवित्र मिलेगा। 27/12/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। हाँ, ये जो भी पांच तत्व है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनसे ये शरीर बनता है, इस समय में कलयुग के अंत में सब तमो प्रधान। और फिर क्या होगा है? आज तमो प्रधान और कल क्या बनेंगे? सब सतो प्रधान बनेंगे, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। और ऐसे नहीं कि मनुष्य ही बनेंगे, नहीं, जो भी प्राणी मात्र हैं वो सब सत्व प्रधान। अच्छा, प्राणी ही सत्व प्रधान बनेंगे? जिनमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, है? जड़ वस्तुएं हैं, वो सत्व प्रधान नहीं बनेंगे है? वो भी सत्व प्रधान, एवरीथिंग सत्व प्रधान। ओम शांति।